SBS हिंदी।
ऑस्ट्रेलिया की चुनावी कवायद अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है, लेकिन भारत में करीब दो महीने के जबरदस्त चुनावी घमासान का परिणाम शेष है। भले ही ऑस्ट्रेलिया में एग्जिट पोल या प्री पोल सर्वे का मुंह काला हुआ, फिर भी भारत की बनारस, अमेठी, आजमगढ़, भोपाल, गुरदासपुर, पटना साहिब या दिल्ली मुंबई का हाल क्या है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे भारत के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुशांत सिन्हा से। सुशांत जी, SBS रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद जीतार जी, और ऑस्ट्रेलिया के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
सर, ये बताएं कि भारत के जो बड़े राजनीतिक दिग्गज हैं, आखिर उनकी किस्मत में क्या लिखा है? क्यों ना हम लोग शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सीट है बनारस, वहां से करते हैं। बनारस का क्या हाल है?
जीतार भाई, मुझे ऐसा लगता है, जो हमारा एग्जिट पोल भी कह रहा है और तमाम दूसरे एग्जिट पोल कह रहे हैं, कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में वाली हालत जो है वो वाराणसी में दिख रही है। वहां पर नरेंद्र मोदी जो है वो काफी आगे दिखते हैं, जो लोगों से बात करके लग रहा है और एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहे हैं कि वो रिकॉर्ड बनाएंगे जीत के अंतर का, क्या वो हासिल कर पाते हैं या नहीं, अब सवाल इसी का लग रहा है। क्योंकि मोटे तौर पर आप लोगों से बात कीजिएगा तो वो यही कहते हैं कि वाराणसी में बहुत काम हुआ बीते 5 साल में, और चूंकि वाराणसी की तस्वीर बदली है इसलिए उनका विश्वास सांसद नरेंद्र मोदी में भी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी है। तो प्रबल संभावना है कि नरेंद्र मोदी दोबारा वाराणसी जीतने जा रहे हैं।
चलिए, अमेठी पर भी मैं आना चाहूंगा, मगर अमेठी पे जाने से पहले बनारस के पास ही की एक सीट पर जाते हैं, आजमगढ़। वहां से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, सपा बसपा का गठबंधन हुआ है। जीत जाएंगे या रिकॉर्ड बनाएंगे या उनको टक्कर मिल रही है, क्योंकि जो उनके मुकाबले पे हैं वो भी एक बड़ा फिल्मी सितारा है उस इलाके का।
फिल्मी सितारा भी है और उनके नाम में भी यादव है, तो याद रखिएगा कि जो आजमगढ़ का यादव वोट बैंक है उसमें वो थोड़ी टेंट तो लगाएंगे। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ उनका नाम है, क्योंकि निरहुआ के नाम पर से वो भोजपुरी फिल्मों में जाने जाते हैं। तो दो यादवों की लड़ाई है आजमगढ़ में, जहां पर अखिलेश यादव और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आमने सामने है। लेकिन आजमगढ़ चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है सीतार जी, और आप ये याद रखिए कि जब नरेंद्र मोदी की सुनामी थी 2014 में, तब भी उत्तर प्रदेश की जिन 5 सीटों को मुलायम परिवार बचा पाया था, समाजवादी पार्टी बचा पाई थी, वो परिवार की 5 सीटें थी जिसमें से आजमगढ़ थी। तो अभी भी मुकाबला वहां है, लेकिन अखिलेश यादव हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक वहां पर आगे दिखते हैं और उनको जीत मिलनी चाहिए।
चलिए, आजमगढ़ से सीधा पहुंच जाते हैं, जिसकी शायद देश विदेश हर जगह चर्चा हो रही है, भोपाल की सीट। साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह का मुकाबला है, अच्छे और बुरे कई कारणों से ये सीट और इसके नेता चर्चा में रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे?
देखिए, मुकाबला बहुत दिलचस्प है और दिग्विजय सिंह के आने से ज्यादा दिलचस्प हुआ है, क्योंकि भोपाल सीट जो है वो पारंपरिक तौर पर बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये चुनौती स्वीकार की और वो मैदान में कूदे। लेकिन जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया और उसको एक मुद्दा बनाने के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लाया गया, उससे ऐसा लग रहा है कि मुकाबला जो है वो कांटे का तो है, लेकिन चूंकि ये बीजेपी का गढ़ है इसलिए यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आगे दिखती हैं। साथ ही अगर हम जब एनालिसिस कर रहे थे एग्जिट पोल में वोट शेयर का, तो हिंदू वोट शेयर जो है वो ज्यादा बीजेपी को जाता दिख रहा है और मुस्लिम वोट शेयर जो है वो कांग्रेस पार्टी यानी दिग्विजय सिंह के खाते में जाता लग रहा है एग्जिट पोल के अनुमान से। तो ऐसा लगता है कि अगर ये पोलराइजेशन हो रहा है तो बीजेपी फायदा वहां होगा, और एक बार फिर से बीजेपी भोपाल की सीट जीत पाएगी, ये कहना गलत होगा कि साध्वी जीत रही है, बीजेपी शायद ये सीट बचा ले जाएगी।
चलिए, मध्य प्रदेश से हम जंप कर लेते हैं, पंजाब की तरफ जाते हैं। पंजाब की 13 सीटों में से कौन सी सीटें सबसे इंपॉर्टेंट दिखती हैं, जहां थोड़ा मुकाबला दमदार है और लोगों को इंटरेस्ट है?
देखिए, पंजाब में सबसे ज्यादा लोगों का जो ध्यान है वो गुरदासपुर की सीट पर है, जहाँ से सनी देओल चुनाव लड़ रहे हैं और वो पहली दफा राजनीति में आए हैं, और उनके जो रोड शोज हुए उसमें हमने देखा कि बहुत भीड़ थी, तो ऐसा लग रहा था कि उनको जन समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि जितार भाई मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सनी देओल के लिए मुकाबला इतना आसान नहीं है, लेकिन जो मेरी बातचीत है वहां लोगों से और जो मेरा फीडबैक है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि सनी देओल ये जो पारी की शुरुआत कर रहे हैं उसमें भी वो गदर मचाने वाले हैं और विपक्षियों के हैंडपंप उखाड़ देने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। जीत शायद उनको मिल सकती है।
पंजाब से अगर हम जाएं बिहार की तरफ, बिहार बड़ा मशहूर है राजनीति में, 40 सीटों का मालिक है बिहार राज्य, सबसे ज्यादा हमारे बिहारी बाबू का क्या हाल है भाई?
देखिए बिहार पर तो सबकी नजरें टिकी हुई हैं और दो सीटें हैं। आप चूंकि पहले पटना साहिब की बात कर रहे हैं जहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में है, तो उनकी बात कर लेते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनको टक्कर दे रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए जीतार भाई कि वो जो पटना साहिब की सीट है वो बीजेपी का गढ़ है और वहां पर कायस्थ वोट जो है वो बहुत बड़ी संख्या में है जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है।
आप भी तो वहीं से आते हैं? वोट बैंक
जी जी, मैं भी वहीं से आता हूँ और मैं भी कायस्थ ही हूँ तो, लेकिन वो कायस्थ जो है वो पारंपरिक तौर पर बीजेपी का वोटर रहा है और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि वहां पर रविशंकर प्रसाद का पलड़ा भारी है, वो वहां पर चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि देखिए वहां पहले भी एक बार ऐसा कायस्थ बनाम कायस्थ की लड़ाई हो चुकी है, कांग्रेस की तरफ से फिल्मस्टार शेखर सुमन थे और तब बीजेपी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा थे और शत्रुघ्न सिन्हा को जीत मिली थी। इस बार भी कायस्थ बनाम कायस्थ की लड़ाई है, लेकिन चूंकि कायस्थ जैसा मैं कह रहा था पारंपरिक तौर पर बीजेपी की तरफ जाता है तो रविशंकर प्रसाद का पलड़ा भारी नजर आ रहा है पटना साहिब में।
और एक और सीट जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई है वो है बेगूसराय, उसके बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह जी, वो अपनी अगर अपने भाषणों के लिए अगर खराब तरीके से कहा जाए तो बदजुबानी के लिए भी जाने जाते हैं, और ऐसा ही कुछ जो सीपीआई के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी कहा जाता है। क्या इन दोनों की लड़ाई में किसी तीसरे को फायदा हो जाएगा?
नहीं, तीसरे को तो फायदा होता हुआ नहीं लग रहा है। जो तमाम एग्जिट पोल्स कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि लड़ाई इन दोनों के बीच ही बनी हुई नजर आई थी, लेकिन फायदा गिरिराज सिंह को हो रहा है। देखिए, और इसकी एक बड़ी वजह है, वहां पर जो गठबंधन महागठबंधन बना आरजेडी के नेतृत्व में, उसने अपना उम्मीदवार उतारा बेगूसराय में और इससे सीपीआई को नुकसान हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट था वहां पर बेगूसराय का वो बट गया है आरजेडी में और सीपीआई के बीच, और इससे फायदा हुआ है बीजेपी को यानी कि गिरिराज सिंह को। गिरिराज सिंह याद रखिएगा कि नवादा सीट पर लड़ते रहे थे, बेगूसराय उनकी अपनी सीट नहीं है, उनका पत्ता कटा नवादा से, उनको बेगूसराय की सीट दी गई, वो बहुत नाराज हुए। बाद में विपक्ष ने इसको कैंपेन का हिस्सा बनाया कि इनको तो बाहर से लाया गया है, ये तो यहाँ से लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मोटे तौर पर वहां पर वो राष्ट्रवाद की लड़ाई बनाई गई कि कन्हैया कुमार जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, इनको आप वोट दीजिएगा, इसका मतलब देश को बांटने की बात कर रहे हैं। अब गिरिराज सिंह जो है उन्होंने बताया कि बीजेपी सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, देश की बात करती है, उन्हें वोट मिलना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि गिरिराज सिंह को जीत मिलने की, अगर जीत मिलती है जिसकी संभावना प्रबल है, तो अगर जीत मिलती है तो उसकी बड़ी वजह यह होगी कि महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा और इससे कन्हैया कुमार को नुकसान हुआ। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, आप ये देखिए कि महागठबंधन को भी ये पता था कि कन्हैया कुमार को फायदा होगा अगर वो अपना उम्मीदवार, कन्हैया कुमार को नुकसान होगा अगर वो अपना उम्मीदवार उतार देते हैं। बावजूद इसके आरजेडी ने बेगूसराय में एक बहुत ही दमदार उम्मीदवार उतारा और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि तेजस्वी यादव जो बिहार का युवा चेहरा है वो ये नहीं चाहते थे कि कन्हैया कुमार जीत दर्ज करें, बिहार में एक पॉपुलर नेता के तौर पर उभरे और उनके लिए आगे भविष्य में किसी तरह का संकट पैदा करें। इसीलिए रणनीति के तहत वहां पर कन्हैया कुमार के खिलाफ महागठबंधन ने अपना प्रबल उम्मीदवार उतारा और बीजेपी को एक तरह से फायदा पहुंचाया भविष्य की चुनौती को खत्म करने के।
बहुत संक्षेप में पूछूंगा, दिल्ली के क्या हाल है? 7 में से कितनी सीट किधर जा रही है?
दिल्ली मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास जा सकती है, तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं। हालांकि शीला दीक्षित भी चुनावी मैदान में है लेकिन उनका जादू यहाँ पर चलता हुआ भी नहीं दिख रहा है और 7 सीटें बीजेपी के पास जा सकती है।
बहुत सारे हमारे सुनने वाले आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं, उनका दिल टूट जाएगा इस बार क्या?
उनका दिल ज्यादा इस बात से टूटेगा कि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर भी नहीं तीसरे नंबर पर जा सकती है।
और बहुत ही संक्षेप में कि मुंबई के क्या हालचाल है? मुंबई दिल्ली की तरह व्यवहार करेगी या मुंबई अपने तरीके से व्यवहार करेगी?
देखिए, मुंबई पिछली बार शिवसेना और बीजेपी ने सारी सीटों पर कब्जा किया था, इस बार भी कमोबेश वैसी स्थिति लग रही है। वो मिला मातोंडकर वहां से चुनाव लड़ रही है पहली बार, लेकिन उनके लिए राजनीतिक सफर बहुत रंगीला नहीं होने जा रहा, शायद उनको हार मिलने जा रही है ऐसा लग रहा है। और मुंबई पर बीजेपी शिवसेना का कब्जा रहेगा ऐसा लग रहा है, एनसीपी को शायद एक सीट जाए।
सुशांत जी, जाने से पहले केवल ये बता दें कि भाई राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दो सीटें हैं, अमेठी और वायनाड, क्या होने जा रहा है वहाँ?
देखिए, वायनाड तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा और इसीलिए शायद राहुल गांधी वहां गए भी थे, लेकिन अमेठी को लेकर बहुत दिलचस्पी है लोगों में। और मैं आपको ये बताऊं जीतार्थ की, अमेठी की लड़ाई में आज की तारीख में बड़े से बड़े पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हाँ राहुल गांधी ही जीतने जा रहे हैं, ये 100% होने जा रहा है। इतनी कांटे की टक्कर है और इसकी बड़ी वजह यह है कि स्मृति ईरानी ने पिछली दफा हारने के बावजूद 5 साल में वहां वक्त दिया है, लोगों से मिली है, काम किया है, बार बार जाती रही, और इसीलिए जो राहुल गांधी किसी अमेठी में कई कई लाख के मतों के अंतर से जीता करते थे, आज की तारीख में अमेठी की स्थिति यह है कि राहुल गांधी जीतेंगे या हार जाएंगे, ये कहने की स्थिति जो है वो किसी के लिए स्पष्ट नहीं है। और साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी हार जाएं तो उन्हें बहुत आश्चर्य नहीं होगा। तो यानी आप समझ लीजिए, ये बहुत ही कांटे की लड़ाई है और पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है।
जी सुशांत जी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।